भागवत सार की श्रृंखला में चौथा स्कंद 22वें अध्याय पर चर्चा जारी है। 40वें श्लोक को कहेंगे, कृपया दोहराइए। कृच्छ्रो महानिह भवार्णमभप्लवेशाम् षड्वर्गन क्रमसुखेन तितीर्षनन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रि। कृत्वोडुपं व्यसनमुद्धत दुस्तराणम् कृच्छ्रो महानिह भवार्णमवम्लवेशाम् षड्वर्गन क्रमसुखेन तितीर्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमाङ्घ्रि। कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर उस्तराणम् कृच्छ्रो महानिह भवार्णमवप्लवेशाम् षड्वर्गन क्रमसुखेन तितीर्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमाङ्घ्रि। कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तराणम् कृच्छ्र कष्टकारक महान अत्याधिक इह यहाँ इस जीवन में भव अर्णवम संसार रूपी समुद्र अप्लव ईशान अभक्तों का जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण की षट वर्ग छहो इंद्रियां न क्रम मगर असुखेन अत्यंत कठिनाई से तितीर्षन्ति पार करते हैं तत अतः त्वं तुम हरे भगवान के भगवतः परमेश्वर के भजनीयं आराधनीय अंग्रिम चरण कमल को कृत्वा करके उडुपम नाव व्यसनम सभी प्रकार के संकट उत्तर पार करो दुस्तर अत्यंत कठिन अर्णम सागर को। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं हैं वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वो समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान हैं। यद्यपि सागर को लांघना कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर सकोगे। तात्पर्य, यहाँ पर संसार की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की गई है। इस सागर का दूसरा नाम वैतरणी है। वैतरणी समुद्र कारणार्णव है जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों के समान तैर रहे हैं। इस सागर की दूसरी ओर वैकुंठ का दिव्य लोक है जिसे भगवत गीता में परस्तस्मातु भावोन्य कहा गया है। इस प्रकार इस भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाला आध्यात्मिक रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। यद्यपि कारणार्णव में सारे भौतिक ब्रह्मांड बारंबार विलीन होते रहते हैं, किंतु वैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते, वे नित्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर जो यही भौतिक ब्रह्मांड है पार करके परव्योम में प्रवेश होने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि अनेक उपायों या नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह देते हैं जैसे मनुष्य किसी अच्छी नाव का सहारा लेना चाहेगा। अभक्त जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, अन्य उपायों कर्म ज्ञान तथा योग से अज्ञान के सागर को पार करने का यत्न करते हैं, किंतु उन्हें इसमें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी कभी तो वे इतनी कठिनाई में फंस जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर पाते। अभक्तों को इसकी गारंटी नहीं है कि समुद्र को पार कर ही लें, और यदि वे पार कर भी लेंगे तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होती है। दूसरी ओर यदि कोई भक्ति करता है और ये श्रद्धा रखता है तो भगवान के चरण कमल ऐसी नाव हैं जो उसे समुद्र के पार आसानी से सुखपूर्वक उतार देंगे। इसलिए पृथु महाराज को समस्त संकटों को पार करने के लिए भगवान के चरणाविंद रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरों से की गई है। यदि मगर कोई भले ही कितना कुशल तैराक क्यों ना हो, किंतु उस पर यदि मगरमच्छ आक्रमण कर दे तो वह बच नहीं पाता। कभी कभी देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार कराने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार होते हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और उस समुद्र के मगरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोऽस्फुरा। हरे कृष्ण। तो इस 22वें अध्याय में अभी तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि कैसे ऋतु महाराज के यज्ञ में चारों कुमार आए और चार कुमारों ने आकर, जब चार कुमार आए तो पृथु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया और फिर उस समय पृथु महाराज ने प्रश्न किए और चार कुमारों में से सनत कुमार फिर उस प्रश्न का उत्तर देने लगे। तो अब उत्तर चल रहे हैं। सनत कुमार ने कहा कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए और भौतिक जगत की आसक्ति को कम करना चाहिए। तो एक तरफ अनासक्ति और दूसरी तरफ आसक्ति, और फिर ये आसक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं इसके लिए 15 तरीके वो दे रहे हैं। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कितने की? 4 की। अच्छा, आप सबकी स्मृति बड़ी अच्छी है। तो ये 4 बिना देखे कौन बता सकते हैं? यस मुकुंद हाँ हाँ वेरी गुड किसकी हाँ योगेश्वर उपासना बहुत अच्छा माताजियों में कोई एक बताए यही चार चीजें बिना देखे हाँ जी बहुत अच्छा तो चार गुण हो चुके हैं अभी तक श्रद्धा होनी चाहिए सनत कुमार कहते हैं हम लोग चर्चा कर चुके हैं श्रद्धा पर जिज्ञासा होनी चाहिए किसके लिए जिज्ञासा भगवत धर्मचर्या या भगवान की भक्ति के विषय में और फिर अध्यात्म योग निष्ठया जो आध्यात्मिक मार्ग है योग जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं उसमें पूर्ण निष्ठा हो और उसको हम अपने जीवन में अपनाएं और फिर योगेश्वर उपासना तो ये चार चीजों की चर्चा हो चुकी है फिर आगे वो कहते हैं नित्यम पुण्य श्रव कथया पुण्ययाच तो ये पांचवा गुण दे रहे हैं तो इस श्लोक में पांच उन्होंने गुण दिए चार हम चर्चा कर चुके हैं तो जब हम श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा करते हैं अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं और भगवान की उपासना भगवान के भक्तों की उपासना करते हैं तो कैसे वो उपासना करनी चाहिए उसको यहां बता रहे हैं नित्यम पुण्य श्रवः भगवान की कथाओं को नित्य सुनना तो ये बहुत आवश्यक है भागवत को जैसे हम सुनते हैं प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जैसे हम भागवत सुनते जाते हैं हमारे हृदय से जितने भी कल्मश हैं वो दूर हो जाते हैं श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयंतस्तु हि अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम अर्थात जितने भी हृदय में अभद्र हैं अनर्थ हैं केवल भगवान की कथा के श्रवण से श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण कृष्ण की कथा के श्रवण से विदुनोति धो डालता है ये जो कितनी भी गंदगी है अनर्थ क्या है हृदय की गंदगी है शुद्ध हृदय में कोई अनर्थ नहीं होता शुद्ध हृदय में कोई भौतिक कामनाएं नहीं होती तो जब हृदय में मल आ जाता है गंदगी आ जाती है तो हृदय भौतिक इच्छाओं को करता है इसीलिए विधुन होती उसको धोना होता है तो कैसे धो सकते हैं भगवान की कथा से श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण और इसी के द्वारा तदा रजस्तमो भाव तब ये जो रज तम भाव इत्यादि है इससे हम परे जा सकते हैं और शुद्ध सत्व में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं तो ऐसे ये अगला लक्षण वो बताते हैं कि हमें भगवान की कथाओं को और कैसे सुनना चाहिए नित्यम हर रोज सुनना चाहिए ऐसा नहीं कि रविवार के दिन सुन लिया फिर अगले रविवार को अगर घर में गेस्ट नहीं आए तब आकर सुनेंगे नहीं तो फिर उसके बाद का रविवार नित्यम तो देखिए ये उनके लिए है इसीलिए हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं जो भक्ति को केवल एक दिखावे के लिए अपनाते हैं या भक्ति को उन्होंने जीवन चलाने के लिए अपना लिया है उनको ये सब आवश्यकता नहीं है उनके लिए ये सब रुचिकर नहीं होगा उनको रुचि नहीं आएगी ये क्या श्रद्धा होना भगवान की उपासना भक्तों की सेवा और ये श्रवण करना और आगे भी कई गुण हैं लेकिन जो भक्ति में गंभीर रहना चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये गुण सनत कुमार दे रहे हैं और क्यों आवश्यक है हमारे लिए सुनना क्योंकि एक महाजनों के द्वारा दिया जा रहा है सनत कुमार महाजन हैं भक्ति के ज्ञान को देते हैं वैसे भागवत भी सनत कुमारों ने ही कही है सनत कुमारों ने पहले भागवत कही हुई है पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि सनत कुमारों ने ये भागवत नारद मुनि को सुनाई थी हम भागवत में देखते हैं कि नारद मुनि ने व्यास देव को बताया तब व्यास देव ने फिर आगे इसको कहा लेकिन नारद मुनि को किसने बताया सनत कुमारों ने ये वर्णन आता है ये एक समय जब वे लोग आए थे, उन्होंने नारद मुनि थोड़े चिंतित थे जीवों के लिए, तो उस समय भागवत को उन्होंने कहा। तो इसीलिए सनत कुमार जो कह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पांचवा गुण वो देते हैं। आज थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि दो दिन में केवल चार ही गुण हुए हैं, 15 गुण हैं, आज पूरे 15 करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद अगला गुण वो अगले श्लोक में देते हैं। तो अगला गुण वो देते हैं, अर्थेन्द्रिय राम गोष्ठस अतृष्णया। अर्थ इंद्रिय राम, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की गोष्ठी, गोष्ठी मतलब साथ में मिलना, सभा करना या उनके संग में रहना, ऐसे लोगों की गोष्ठी के लिए अतृष्णया कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। कैसे लोगों की? अर्थ इंद्रिय आराम। जो लोग तीन चीजों में बड़े आसक्त हैं, धन अर्थ यानी धन, इंद्रिय यानी इंद्रिय भोग, और आराम आराम से रहना या भोग करना। तो जिन लोगों ने जीवन में इसको उद्देश्य बनाया है, किसको? अर्थ इंद्रिय आराम, कि बस धन कमाए। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, बोलते हैं ऐसे लोग जिनका ये वर्णन हो रहा है, इस कलयुग में ज्यादातर ऐसे लोग हैं। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं, सबसे पहले तो वो 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा, तो ऐसे लोग आराम चाहते हैं, इंद्रिय आराम। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं पहली चीज वो रात बर्बाद करते हैं, किसमें? या तो 6 घंटे से अधिक सोते हैं या फिर मैथुन सुख में उसको बर्बाद कर देते हैं। तो रात्रि उनकी चली जाती है उसमें, और फिर जब सुबह उठते हैं दिन में क्या करते हैं? धन कमाते हैं। और जब धन कमाते हैं तब क्या होता है? जब धन आ जाता है तो पत्नी के लिए बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, बोले बस इसी में सारा जीवन चला जाता है। तो वैरागियों के लिए प्रभुपाद ने कहा 6 घंटे से ज्यादा जो सोते हैं वो फिर अर्थेंद्रिय आराम वो कैटेगरी में चले जाते हैं, और गृहस्थों के लिए जो मैथुन सुख में रात्रि बिता देते हैं। तो दिन हमारा बीत जाता है धन कमाने में, और रात्रि बीत जाती है एक थोड़ा सा सुख लेने में, जीवन समाप्त। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? तो सनत कुमार कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग त्यागना चाहिए। रूप गोस्वामी भी कहते हैं, संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसीदति। संग त्यागने से प्रसीदति विनश्यति नहीं, वो पहले वाले श्लोक में है। संग त्यागात, संग त्यागना चाहिए। किसका संग त्यागना है? अर्थ इंद्रिय आराम। ऐसे लोगों का संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा धन कमाने में लगे, क्यों नहीं है? क्या तकलीफ होती है ऐसे लोगों का संग कर लेने से? अरे अच्छे लोग हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, क्या क्या गलती है? और कभी कभी मंदिर को डोनेशन भी देते हैं। क्या गलती है ऐसे लोगों से मिलने में, बताइए? अगर वो धन कमाने में लगे हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम लोग तो जाते हैं ना, मिलते हैं, धन मांगने के लिए जाते हैं कि नहीं? हम लोग जाते हैं जन्माष्टमी रथ यात्रा, वैसे भी आप आइए नहीं आइए कोई बात नहीं, पैसा दे दीजिए। हाँ, तो ऐसे लोगों से क्या गलती है बताइए मिलने में? हाँ, चेतना दूषित हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाकर पैसा नहीं मांगेंगे तो मंदिर कहां से चलेगा? चेतना दूषित हो जाएगी, ठीक है, मंदिर कैसे चलाएंगे? अब मंदिर में तो रहने वाले ब्रह्मचारी तो काम नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ तीनों काम नहीं करते हैं। अब उनके पास जाके पैसे वालों के पास पैसा नहीं मांगेंगे तो मंदिर कैसे चलेगा बताइए? हाँ, संग लेना नहीं चाहिए, संग देना चाहिए। यस, प्रभुपाद भी गए, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद भी कई बड़े बड़े लोगों से मिले थे, लेकिन उनको भक्ति का ज्ञान देने के लिए। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उनकी चीजों से प्रभावित नहीं होंगे लेकिन अपनी चीज उन्हें दे सकेंगे, तब जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा हुआ कि हम किसी बड़े व्यक्ति के घर गए, देखा कितना आनंद है, कितने आराम से रह रहा है, और मुझे देखो एक साथ सोना पड़ता है आश्रम में, चार लोग छह लोग एक साथ सोते हैं, और वो भी कभी कोई पंखा बंद कर देता है, कभी चालू कर देता है, कितना कष्ट है आश्रम में। और यहाँ देखो बढ़िया एकदम रह रहे हैं ऐश्वर्य से, यही जीवन अच्छा बाहर। इसलिए हमें अपना संग देना है। जैसे वो कथा है कि एक मगरमच्छ रहा करता था पानी में, तात्पर्य में प्रभुपाद ने मगरमच्छ का वर्णन किया, तो नदी में रहता था और पेड़ पर एक बंदर रहता था, तो दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन उसने बंदर से कहा, मगरमच्छ ने, कि आओ तुम्हें घुमा लाता हूँ, बैठ जाओ मेरे पीठ पर, तुम्हें घुमा लाता हूँ पानी में। तो चल दिया, उसने सोचा मित्र है, वो भी कूद गया, तो बीच में ले गया पानी के, तो बंदर घबरा गया, अब तो कहाँ भागना। तो बंदर ने कहा चलो चलो वापस जाएंगे। उसने कहा वापस नहीं, आज तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के पास ले जाऊंगा जो अंदर रहती है। तो क्यों पत्नी के पास? उसने मुझे कहा है कि उसे बंदर का हृदय बहुत पसंद है, वो खाना चाहती है, तो इसलिए बंदर का हृदय, इसीलिए तुम्हें ले जा रहा हूं। तो अब तो तुम गए, अब कुछ नहीं हो सकता। बंदर ने चारों तरफ देखा, पानी है, और मगरमच्छ में पानी से कौन बैर, पानी में मगरमच्छ से कौन बैर कर सकता है? मगरमच्छ तो बहुत शक्तिशाली होता है, हाथी भी नहीं कर पाया गजेंद्र। तो बंदर ने इधर उधर क्या करें, तो उसने कहा, जैसे ही उसने कहा कि मेरी पत्नी को तुम्हारा हृदय बहुत पसंद है, तो बोले अरे 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 पहले क्यों नहीं बताया? तो मगरमच्छ ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले पहले बताते कि हृदय चाहिए, हृदय तो मैं वो पेड़ पर टांग कर आ गया। अच्छा हाँ, पहले बताना था, तुम भी कितने कैसे मित्र हो, बताया नहीं पहले। तो हृदय तो मैं पेड़ पे टांग के आया, चलो वापस जाएंगे, मैं पेड़ पे से हृदय ले आऊंगा, तुम्हारी पत्नी को संतुष्ट करें। बहुत अच्छा, वापस आया, कूद गया। अब मगरमच्छ ने कहा चलो अभी मिला, बोला बहुत अच्छा मिल गया, अभी हरे कृष्णा जाओ। तो हमें अपना हृदय किसी को नहीं देना है। तो जब हम प्रचार के लिए जाएं, ऐसे लोगों से मिले, तो अपना हृदय नहीं देना है, हृदय मंदिर में टांग कर जाइए, ठीक है? और फिर ऐसे लोगों के पास जाइए, थोड़ा बहुत उन्हें प्रचार करने का प्रयास कीजिए, नहीं होता है ठीक है वापस आ जाए, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना। तो इसीलिए यहां पर कहा गया ऐसे लोगों से जो अर्थ इंद्रिय आराम केवल इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी चेतना प्रभावित होगी। क्यों होगी? हम तो भगवान की सेवा में लगे, फिर हमारी चेतना क्यों प्रभावित होगी? जन्मों का असर है, एक जन्म का प्रभाव नहीं है, कई जन्मों तक हमने इंद्रिय आराम इंद्रिय भोग की कामना की है। तो वो जो प्रभाव अभी तक चेतना पर है, अभी हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं, हमने पूर्ण समर्पण नहीं किया है, इसीलिए हमारी चेतना अभी भी खींची जाएगी भोगों की ओर, इसीलिए दूर रहना। तो पहल हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि उनका बहुत संग करें, क्योंकि हम शक्तिशाली नहीं। और अगर शक्तिशाली हो भी, जो भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, वे लोग भी नहीं करते हैं उनका संग। क्यों क्यों प्रभावित होना ऐसे लोगों से? तो मिलना नहीं चाहिए, कैसे कई उदाहरण है, कई कई भक्तों को बड़े बड़े लोग मिलना चाहते, तो नहीं मिलना है मुझे, कोई चिंता नहीं, क्यों मिलना? चैतन्य महाप्रभु स्वयं राजा मिलना चाहते, चैतन्य महाप्रभु का मैं नहीं मिलूंगा। अरे वो राजा है, होगा राजा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं मिला, मैं ऐसे भोगी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा। हाँ, जब तक उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य त्याग नहीं दिया, भक्त के रूप में, एक नम्र सेवक के रूप में चैतन्य महाप्रभु के सामने नहीं आए, महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। तो इसीलिए ये एक भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है कि हम ऐसे लोगों का संग को त्यागें। रूप गोस्वामी भी कहते हैं ना कि जब हम लोग बहुत ज्यादा लोगों का संग करते हैं, जन संग होता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग, रूप गोस्वामी कहते हैं, ये दो बार रूप गोस्वामी ने दोनों श्लोकों में कहा, पहले श्लोक में जहां वो कुछ चीजों को मना करने के लिए कह रहे कि ये नहीं करना चाहिए, इनसे भक्ति का विनाश होता है, तो उसमें भी वो कहते हैं, क्या शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, संग त्याग। कहते हैं कि वो श्लोक क्या है, हत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पोनियमाग्रह संग त्याग सतोवृत्ति, और दूसरा वो कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसमें है संग त्याग। गलत श्लोक बोल दिए, इसीलिए हम कह रहे भक्ति प्रसिद्ध्यति संग त्यागा में। तो पहला श्लोक क्या है, प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। आप लोग हमें ही कंफ्यूज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें श्लोक गलत आ गए, ये कहां से। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना भक्ति प्रसिद्ध देती, और हम ही को आप लोग थोड़ा हमने सोचा शायद हमारी गलती हो गई होगी। नहीं, जनसंगश्च लौल्यम च, तो जनसंग पहले श्लोक में कहते हैं अगर जनसंग करोगे तो भक्ति विनश्यति, और संग त्याग भक्ति प्रसिद्धति। तो दोनों बार इस चीज को उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद कई स्थानों पर कहते हैं कि इस्कॉन संस्था इसीलिए बनाई गई है कि सब एक दूसरे का संग करें भक्तों का, ताकि बाहर के लोगों को एक अवसर मिले वो भक्तों का संग कर सकें, और भक्तों को भी अवसर मिले कि आपस में भक्ति के वातावरण को बनाए रखें। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज वो कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं तत्सम्मानात् नाम परिग्रहेण च, वो कहते हैं कि ठीक है कि आपने ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जो अर्थ इंद्रिय आराम उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, तत् सम्मान सम्मतान, उनके समान जो है मतलब जो उनका संग करते हैं उनका भी संग नहीं करना। सीधे तो ऐसे लोगों का संग करना ही नहीं है, लेकिन उनका भी संग मत कीजिए जो उनके साथ में रहते हैं। भले वो अर्थ बहुत धनी नहीं है, बहुत भोग नहीं करता, लेकिन उसके साथ में रहता है तो भी आप मत रहिए, उसका भी संग मत कीजिए। देखिए सनत कुमारों ने कितना मतलब ऐसे लोगों को एकदम नीच कह दिया, उनका तो करो ही मत, उनके साथ रहने वालों का भी मत करो। क्यों उनके साथ रहने वालों का नहीं करें, वही बात कि उनके साथ रहने वाला क्या बात करेगा, अरे पता है वो व्यक्ति कितना धन है उसके पास, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, क्या उसके अंदर लक्षण है, हर एकादशी को या हर जन्माष्टमी को दान देता है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और घर देखो उसका, मैं तो जाता हूं, जब भी जाता हूं कितना बढ़िया खिलाता है, वह हो गया हमारा सारा वैराग्य पानी में, राइट। इच्छा आ जाएगी हृदय में, अच्छा बढ़िया खिलाता है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या दाल राइस है, या कभी कभी सॉरी पुली वगैरह हो जाता है, राइट। तो समझ जाता है, तो यहाँ पर क्या है मंदिर में, अरे बहुत सरल मिलता है, उसके घर में बहुत अच्छा, आदत इच्छा हो जाती है कि ठीक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है उसका भी संग नहीं करना, ताकि हमारी चेतना शुद्ध रहे। मूल बात ये है कि हमें ऐसा संग रखना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। अगर कोई अमीर आदमी है, अगर कोई प्रतिष्ठा वाला आदमी है, लेकिन वो भक्त है, तो उसका संग करना चाहिए, उसके संग से नाश नहीं होता। लेकिन केवल ये उनके लिए कहा गया जो केवल उसी में लगे हुए हैं, उनको कोई रुचि नहीं है भगवान की भक्ति में, भगवान के मंदिर आने में, ऐसे लोगों की निंदा की गई है, ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए कहा गया। लेकिन ऐसा भक्त जो जैसे चैतन्य लीला में हम लोग देखते हैं पुंडरिक, वो तो इतने महान भक्त थे, लेकिन कैसे रहते थे, उफ उनका ऐश्वर्य देखे तो कोई मानेगा नहीं कि ये भक्त है। उनके सामने गए, मुकुंद लेकर गए, देख रहे हैं क्या है, पुंडरिक विद्यानिधि बड़े बहुत बड़े भक्त हैं, और क्या कर रहे हैं, आराम से बिस्तर पर लेटे हुए, और बिस्तर भी ऐसा मखमल का गद्दा, कोई सादा नहीं कि जमीन पर वो एक चटाई बिछा कर लेटे हुए हैं। भक्त हैं बहुत महान, उनको लेके गए दिखाने की बहुत बड़े भक्त आए हैं, चलो तुम्हें मिलाएं। अब आप सोचिए, आपको कहा जाए कोई बहुत बड़े भक्त आए हैं, चलो आपको मिलाएं, और आप देखो आराम से बहुत ऐश्वर्यशाली गद्दे पर लेटे हुए हैं, लोग उनकी सेवा, चामर हिलाया जा रहा है, एक कोई थूकदान लेकर खड़ा है, एक कोई टीकदान लेकर खड़ा है, पान चबा रहे हैं। आप बोलो क्या ये कौन, इससे तो अच्छा मैं आता ही नहीं तो अच्छा था। क्योंकि हमारे लिए भक्त की क्या परिभाषा है, क्या चित्रण है भक्त का, वैरागी होना चाहिए। भक्त है कृष्ण कृष्ण बोले, आंखों से आंसू निकलने चाहिए, कपड़े वपड़े फाड़ते हुए घूमना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। उसके तो मुख पे केवल कृष्ण होना चाहिए, पान चबाने वाला भक्त कैसे हो सकता है, सही है ना। ऑफकोर्स नहीं हो सकता, नहीं तो कल को आप सड़क पे जाते हुए कोई पान चबाने वाले को देखोगे, प्रवचन में सुना था भक्त हो सकता है, दंडवत प्रणाम करेंगे, क्यों पांच बाता है केवल। तो ऐसे देखा लेकिन बड़ा ऐश्वर्य, तो थोड़ा मन में आ गया कि नहीं नहीं ये श्रीवास के मन में आया, ये भक्त है ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बस उसके बाद तुरंत श्लोकों को कहा गया भागवत के, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापाय यदप्य साधवी। सुनते ही भाव विभोर हो गए। हम लोग तो कई बार सुनते कौन सा भाव आता है हमारे हृदय में, बोलते भी हैं सुनते भी हैं कोई भाव नहीं आता, अपने से कोई लोटा नहीं जमीन पर, लेकिन उन्होंने सब अचानक ये सुनकर सब इधर उधर बिखेर दिया, जमीन पर लौटने लगे, कपड़े वपड़े फट गए, जो पहना था कुछ ध्यान नहीं, मतलब कपड़े इसलिए नहीं फाड़ दिए कि जबरदस्ती दिखाने के लिए कितना बड़ा भक्त, उनको ध्यान नहीं रहा, चेतना नहीं रही। देखिए इसीलिए नकल नहीं करनी चाहिए। एक समाज है जो ऋषभ देव की नकल करता है कि ऋषभ देव नग्न घूमते थे, उन्होंने जब सब कुछ त्याग दिया, बहुत बड़े राजा थे, सब त्याग दिया तो नग्न घूमते थे, इसलिए हम लोग भी नग्न घूमेंगे, कपड़े नहीं पहनते, ये नकल नहीं होनी चाहिए। ऋषभ देव ने जान मुझ के कपड़े नहीं फाड़े थे, जान मुझ के नग्न नहीं घूमने लगे थे, उनको बाहरी चेतना नहीं थी, वो कहाँ पड़े हैं कैसे हैं भागवत में वर्णन है, वहीं पर वो मलमूत्र त्यागते थे, उसमें ही पड़े रहते थे, कुछ पता नहीं था, वो भक्त थे लेकिन उनकी नकल करके हम लोग कपड़े उतार कर घूमने लगे कि ऋषभ देव घूम रहे थे इसीलिए हम भी ऐसे सन्यासी हैं, तो इसलिए नकल नहीं करनी चाहिए। तो इतने भाव विभोर हो गए, तो ऐसे भक्तों का संग करने से हमें भक्ति प्राप्त होती है, भले वो ऐश्वर्यशाली हैं लेकिन हृदय भगवान को दिया हुआ। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर अमीर आदमी, हम लोग वहां बोर्ड लगा दें अमीर आदमियों के लिए एंट्री मना है, प्रवेश वर्जित है, अंदर में ही आना, नहीं क्यों नहीं आना, किसी के लिए मना है, भगवान ने कोई ऐसा कहा है कहीं पे कि अमीर आदमी मेरी भक्ति नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता, लेकिन ऐसे लोगों का हमें संग करना। जैसे एक बार प्रभुपाद भक्तों के साथ में थे, चर्चा हो रही थी सुबह की सैर पर कि सन्यासियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वैरागियों को स्त्रियों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्मरण नहीं करना चाहिए। कहते कहते बात होते होते मंदिर में आए, तो मंदिर में सीढ़ियों पे प्रभुपाद की शिष्याएं खड़ी थीं, वैष्णवी खड़ी थीं बहुत सारी, और अभी अभी चर्चा होकर आ रही है कि किसी का संग नहीं करना चाहिए स्त्रियों का, लेकिन प्रभुपाद ने अपनी छड़ी लेकर दिखाया और कहा लेकिन ये वैष्णवी हैं तो इनके संग में कोई गलती नहीं है। अर्थात अगर भगवान की भक्ति में कोई बहुत आगे बढ़े हैं तो हो सकता है वो बहुत अमीर हों, ऐश्वर्यशाली हों, उनके पास धन हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान के भक्त हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो ये तात्पर्य है। अन्यथा बाकी सारे लोगों को हमें दूर रखना चाहिए, और वही नहीं उनका जो संग करते हैं उनको भी दूर रखना चाहिए, उनके भी निकट नहीं जाना चाहिए। तो कितने गुण हो गए? हाँ, 6, 7, 6, 7 छे हुए कि सात हुए, आप बताओ सातवां कौन सा? हाँ हाँ, दो अलग अलग है तो सात हो गए, प्रभु जी कह रहे हैं सात हो गए, छे हुए, सब लोग छे कैसे कह रहे हैं, पहले श्लोक में कितने हुए थे? पहले श्लोक में कितने हुए थे? पांच। पहले हम लोगों ने चार किए थे और आज एक का वर्णन किया था, पांच हुए थे ना पहले श्लोक में, और इस श्लोक में अब तक कितने हो गए? दो, तो कितने हुए? मैथमेटिक्स वीक है आप सबका, सब इतनी जोर जोर से छ छ छ छ बोल रहे थे। पहले श्लोक में चार हम लोग कर चुके थे और फिर पुण्य श्रव कथया ये पांचवां किया ना हमने चर्चा, और फिर छठा है कि आरामो अर्थो इंद्रिय आरामो का संग नहीं करना, सातवां है उनके साथ में भी जो रहते हैं उनका संग नहीं करना, ये सातवां, ठीक है आप लोगों ने शायद दोनों को एक कर दिया होगा, तो सातवां। उसके आगे वो कहते हैं विविक्त रुचया परितोष आत्मनी विना हरेर गुण पीयूष पानात। ये एक गुण है दोनों लाइन में। तो क्या गुण है कि व्यक्ति विना हरेर पीयूष पानात, पीयूष यानी अमृत, हरेर यानी भगवान हरि का या हरि की कथा का, विना यानी उसके बिना, विना हरेर पीयूष पानात, अगर वो उसको भगवान की कथा का आनंद नहीं मिल रहा है परितोष आत्मनी, तो उसको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा चिंता में रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो बता रहे हैं कि अगर हमें संग नहीं करना है ऐसे लोगों का, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन ऐसे हमें बनाना चाहिए कि अगर हमें कृष्ण कथा का श्रवण नहीं हो रहा है तो हम हमेशा चिंता में रहें, सुखी नहीं रहें। बिना कृष्ण कथा के श्रवण के हम सुखी नहीं रहें, ऐसा जीवन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज रोज भागवत में बैठना पड़ता है, नियम है, अटेंडेंस होती है, क्या करें, काश आज मैं बीमार हो जाऊं बहुत अच्छा है, एक दिन सो जाऊंगा। नहीं, भक्त को सोचना चाहिए कि अगर मैं बीमार भी हूं तो जाके कथा सुन लूं, नहीं तो और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा, कथा तो सुनना। तो हमारा जीवन ऐसे बनाना चाहिए, सनत कुमार कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुने बिना कोई आनंद नहीं रहे, कोई संतुष्टि, परितोष आत्मनी, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिले, स्वयं को संतुष्टि नहीं मिले भगवान की कथा सुने बगैर, ऐसा हमें जीवन बनाना चाहिए। तो इसीलिए अपने अपने जीवन में हमें ये कार्य करने चाहिए। क्या करने चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा हम बनाएं कि कथा श्रवण का समय बहुत अच्छी तरह से मिले। जीवन को ऐसे नहीं बनाएं कि कथा श्रवण हो रही है, कथा चल रही है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। बाकी सारे कामों को अलग रखना चाहिए, भगवान की कथा को महत्व देना चाहिए। जीवन में हम जिस चीज को महत्व देते हैं वो चीज हमारे लिए प्रभावी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग चर्चा थोड़े समय पहले हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कर रहे थे नरसिंह जयंती के समय पर, तो ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद हर भक्त के हृदय में होते हैं। हमारे हृदय में हिरण्यकश्यप भी हैं और प्रहलाद भी हैं। हिरण्यकश्यप क्या है? जो हमें भोगों की ओर खींचते हैं। अरे कहाँ मंगल आरती में जा रहे हो, थोड़ा दो घंटा सो लो, ये क्या, ये रोज रोज कितने दिन गए, 7 दिन एक साथ गए ना मंगल आरती, बस हो गया, और क्या चाहिए। ठीक है, ये हिरण्यकश्यप है जो खींच रहा है, कहाँ ये सब कर रहे हो, कथा सुनने जा रहे हैं, क्या कथा, रोज वही तो बोलते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान की भक्ति करो, और क्या बोलने वाले, यही बोलने वाले, क्या सुनना है इसमें जाकर, घर पे रहो आराम से। ये हिरण्यकश्यप तो हर भक्त के हृदय में होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम भक्ति करने लग गए हैं तो बस प्रहलाद की तरह शुद्ध भक्त हो गए, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण है, कोई आए काटे मारे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। तो हमारे हृदय में हिरण्यकश्यप भी है और प्रहलाद भी है। प्रहलाद कैसे है, जब कथा सुनते तो ऐसा लगता है यही तो जीवन है, इसके परे क्या करना, क्या मूर्ख हूं मैं, बाहर इतना लगा हुआ हूं, बेकार में मेहनत कर रहा हूं, ये जीवन है, ऐसा होता है ना। ये प्रहलाद बता रहे अंदर से, कहां जा रहे हो, क्यों इतना श्रम कर रहे हो, कथा श्रवण करो। हमें लगता है कल से कुछ भी हो जाए सारे काम बंद कर दूंगा, लेकिन कथा को नहीं छोड़ूंगा, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, जपा को नहीं छोड़ूंगा, ये प्रहलाद है। तो एक तरफ हिरण्यकश्यप है जो हमें खींचता है, एक तरफ प्रहलाद खींचता है। हम जिसको ज्यादा महत्व देंगे वो हमारे ऊपर प्रभावी होगा। हम अगर प्रहलाद को ज्यादा महत्व देते हैं तो प्रहलाद प्रभावी हो जाएंगे, मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम हिरण्यकश्यप को ज्यादा महत्व देते हैं, जिसको ज्यादा खिलाते हैं, मान लीजिए दोनों हैं हृदय में और दोनों को भूख लगी है, हम जिसको खिलाएंगे वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसी तरह हम जैसा जीवन जिएंगे, अपना जीवन जैसा बनाएंगे, वैसा प्रभाव होगा हमारे ऊपर। ऐसा मत सोचिए कि हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे, लेकिन एक दिन भागवत सुन लिया बस शुद्ध भक्त, चार हाथ आ गए, वैकुंठ से प्लेन आएगा और चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। वैकुंठ से प्लेन नहीं, वो तीन आएंगे रस्सी लेकर हाथ में और खींच कर लेकर जाएंगे। तीन जानते हैं ना कौन है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। रस्सी लेकर आएंगे, बड़े बड़े दांत। और तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को ऐसे बनाना है। सनत कुमार कह रहे हैं कि ऐसे बनाइए जीवन को कि कथा में रुचि हो, नहीं सुनाई दे तो तड़पे व्यक्ति। जैसे जब हम लोग को भूख लगती है, व्यक्ति तड़पता है, तीन दिन नहीं खाया मान लीजिए, चार दिन नहीं खाया, कोई योगी है वो बात अलग है, लेकिन अगर साधारण व्यक्ति वो तो एक समय नहीं खाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है ना। समझी जी दो दिन नहीं खाया, तीन दिन, तो जो उसके अंदर वो भूख होती है वैसी भूख चाहिए कृष्ण कथा के लिए। या फिर व्यक्ति को कभी कभी काम वासनाएं बहुत सताती हैं, उसको लगता है स्त्री संग करना, स्त्री संग कुछ भी हो जाए, करने के बाद दुखी होता है कि हाय हाय क्या किया, लेकिन उस समय उसकी वो तीव्रता चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं एक युवक का युवती के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण चाहिए कृष्ण कथा के लिए। या फिर एक एक गाय और एक बछड़ा, आप देखिए जब दूध पीने का समय होता है बछड़े को साधारणतः बांध दिया जाता है, बांधा रखा होता है, और छोटा बछड़ा वो इतना तकलीफ देता है, इधर से उधर भागता है, इधर से उधर गले से खींचता है, कुछ भी करे, क्यों, केवल माँ के पास जाना उसको दूध पीने के लिए। अभी हम लोग वृंदावन गए थे तो वहां एक स्थान पे गए थे भांडीर वन, तो शायद आप लोगों ने देखा होगा एक बछड़ा बंधा हुआ था, वो इधर उधर ऐसे ऐसे, फिर हमने उसको खोल दिया तो गया कहां, सीधा माँ के पास जाकर दूध पीने। वो माँ उसको लात मार रही थी, भगा रही थी, मगर वो उधर सीधा चला गया। वो तीव्रता चाहिए जैसे कथा सुनने के लिए, कि कैसे हम तीव्र हो, भागें, अपना सारा काम बंद कर दें, ऐसी तीव्रता हमें चाहिए। तो हमारा जीवन हमें ऐसे बनाना चाहिए कि हृदय में वो तीव्रता जागृत हो, बाकी सारे कामों को हम त्याग सकें। जैसे व्यक्ति को हम बता रहे थे कि भूख लगती है, उस समय आप उसको कुछ भी दे दो, बड़ी तेज भूख लगी उसको, बोला आराम से सो जाओ, मैं एसी चला देता हूं आपके लिए, वो क्या सोएगा, उसको भूख लगी है उस समय। आप खाने को नहीं दोगे तो, जैसे प्रभुपाद मछली का उदाहरण देते थे, मछली को आप कुछ भी दे दो कोई प्रसन्नता नहीं, पानी में डाल दीजिए बस। ये हमारी स्थिति होनी चाहिए कि हमें बाकी कुछ मिल जाए। हम कथा को जा रहे हैं, घर में कोई गेस्ट आ गए, घर में ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, आंधी तूफान भी आ जाए, कोई कह दे कि अरे आप कथा को जाओगे घर टूट जाएगा, बोले आने के बाद फिर बना लूंगा, लेकिन कथा सुन के आता, ये भाव होना चाहिए। जैसे एक बार ये जयपुर में ऐसी एक घटना हुई थी, दो व्यापारी थे कपड़े के, और उनके बहुत बड़े बड़े गोदाम थे कपड़ों के, बहुत भर के रखते थे। और जयपुर में नियम है कि जितने भी ज़्यादातर लोग रहते हैं आसपास, वो लोग सब सुबह गोविंद जी के दर्शन के लिए जाते हैं मंगल आरती में। आप देखिए आप में से जो लोग गए हैं, तो आप जब मंगल आरती में जाओगे तो इतने लोग भरे पड़े हैं, पूरा मंदिर भरा पड़ा है, आधे घंटे बाद देखिए तो दो लोग केवल झाड़ू लगा रहे हैं, बस कुछ नहीं, मंदिर खाली हो जाता है। क्यों, सब मंगल आरती आते हैं, बहुत अच्छा गुण है, भागते हैं लोग। आप देखिए सुबह के समय चार बजे, चार सवा चार बजे आसपास की गलियों में लोग भाग रहे होंगे, जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं गोविंद जी का दर्शन करना, ये कितना सुंदर भाव। तो ये दोनों व्यापारी भी जैसे नियम था वो लोग वहां पर थे, सुबह का समय था, अचानक उन्हें सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई। अब कपड़े के गोदाम में आग लगेगी तो क्या होगा, तो दोनों गए भागे उधर, तो जैसे देखा तो बहुत बड़ी आग थी, फायर ब्रिगेड वाले प्रयास कर रहे थे लेकिन इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ बचने वाला नहीं था। तो एक जो व्यापारी था वो तो हाय हाय रोने लगा और अब जमीन पर लौटने लगा कि क्या हो गया, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, इत्यादि 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 पता नहीं क्या, रोना धोना और सब उसको संभाल रहे हैं, कुछ संभल नहीं रहा है। दूसरा व्यापारी बड़ा शांत खड़ा था, उसने देखा, दो मिनट देखा, घूमा और चल दिया वापस। तो लोग सारे हैरान हो गए, रे आदमी है कि क्या है, गोदाम जल रहा है। तो उन्होंने लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले मंदिर जा रहा हूँ। तो बोले मंदिर जा रहे हो, गोदाम इधर आग लगी है, बोले देखो अगर मैं यहाँ खड़ा रहूंगा मैं कुछ कर सकता हूँ, आग इतनी बड़ी है, जो करना है फायर ब्रिगेड वाले कर रहे हैं, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो कम से कम जाके भगवान की भक्ति तो करूं मैं, जो कर रहा था वो भी जाएगा ये भी जाएगा, फिर आके देखूंगा जो होगा। कितना सुंदर भाव, आया वो, उसको पता है कुछ कर नहीं सकता, वहां खड़े होकर दूसरा रो रहा है, हाय हाय ये हो गया लुट गया, क्या होगा रोने से बताइए, आग बुझ जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो इसीलिए हमें कथा के लिए, ऑफकोर्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके घर में आग लगे, आप कुछ भी हो, पत्थर हो, सुनामी आए, वैसे तो आना चाहिए, क्या कर सकते हैं वहां खड़े रह के। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी अवस्था में अपने जीवन को इस तरह मोड़ना चाहिए कि हम कृष्ण कथा का श्रवण कर सकें। जीवन को मोड़ना हमारे हाथ में है, कथा का जो लाभ है वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको समझ में आया? कथा श्रवण से भगवान की प्राप्ति होती है, तो भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने 10 साल बिना छू के कथा सुनी है, भगवान को तो लेके ही जाना पड़ेगा। नहीं ले जाएंगे भगवान, क्या कर लोगे आप? तो वो भगवान के हाथ में, लेकिन जीवन को बदलना वो हमारे हाथ में। भगवान ने हमें थोड़ी स्वतंत्रता दी है और वो इतनी ही स्वतंत्रता है कि हम ये चुने कि भागवत कथा के समय घर पे रहें या भागवत कथा के समय मंदिर में रहें, ये हम चुन सकते हैं। बाकी का आगे कृष्ण के हाथ में, उसका लाभ क्या होगा वो कृष्ण देंगे, उसकी हमें चिंता नहीं। इसलिए हमें रोज लिखना नहीं चाहिए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना बिना चूके भागवत क्लास में आया हूं, निश्चित शुद्ध भक्त हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कथा श्रवण करना हमारा कार्य हो, शुद्धता भगवान अपने आप देंगे। तो इसलिए जीवन को ऐसा मोड़िए, इस जीवन को व्यर्थ नहीं कीजिए। यहां ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा को, कृष्ण को केंद्र नहीं बना रहा है जीवन का, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे कार्य त्याग दिए जाएं, जॉब छोड़ दें, व्यापार छोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर कोई कर सके, किसी के पास सुविधा हो तो बहुत अच्छा। सुविधा हो का अर्थ क्या है? मान लीजिए किसी को भगवान ने इतना धन दे दिया है कि अब उसको कमाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जब जरूरत नहीं है तो काम क्यों करना? किसी किसी के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि इतना धन है कि अगर काम नहीं करें, लेकिन तकलीफ यह है कि वो व्यक्ति भी छोड़ना नहीं चाहता, बुढ़ापे तक लगा रहता। जैसे वो कथा एक है कि एक बार एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, बच्चों ने बिजनेस देखना शुरू कर दिया, लेकिन रोज आकर कुछ ना कुछ, अरे ये क्यों किया, वो क्यों किया, बच्चे परेशान, ये बूढ़ा क्षमा चाहते हैं, ऐसे शब्द भागवत में समा, ये क्यों नहीं जाता है, अरे छोड़े हम सब कर लेंगे, लेकिन वो रोज आके ये क्यों किया, ये हिसाब दिखाओ, वो हिसाब दिखाओ। तो उन्होंने सोचा इसको तो कहीं भेजना चाहिए, तो तीर्थ यात्रा जा रही थी, भक्त जा रहे थे, तो भेज दिया, जाओ तीर्थ यात्रा में जाओ, आप जाओ, हम स्पॉन्सर करते हैं आपकी तीर्थ यात्रा, आप जाओ। तो उन्होंने सोचा तीर्थ में जाएगा, भक्तों के संग में रहेगा, तो मन बदल जाएगा, आने के बाद सब छोड़ देगा, वैराग्य आ जाएगा, चला गया। वापस आया फिर वही, इन्होंने बोला अरे कोई काम, कोई लाभ नहीं हुआ तीर्थ यात्रा जाने का। खैर ऐसे बहुत सा प्रयास कर लिया, कुछ नहीं, मंदिर भेजा कुछ नहीं। एक दिन उनके जो व्यापारी लोग थे उनमें से एक व्यापारी मर गया, तो सब लोग गए, सारे व्यापारी गए, तो अब जलाया जा रहा था उसको, और जैसे ही जला रहे थे पुत्रों ने देखा कि पिता की आंखों में आंसू आ रहे, रोने लग गया वो। तो अब तो वैराग्य आ गया निश्चित, ये देख के तो उसको समझ में आया होगा कि एक दिन मैं भी मरने वाला हूं, कहां मैं ये सब में फंसा हूं, छोड़ू मैं ये सब। तो उन्होंने कहा अब वैराग्य आ गया, तो बाहर निकले, पिताजी से थोड़ा सा बड़े प्रेम से, वो उस समय भी रो रहे हैं आंखों में आंसू, पिताजी से पूछा पिताजी क्या हुआ, अब क्यों आंखों में आंसू? कहने का आज मुझे पता चला मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। वाह, पुत्रों ने कहा ये तो आत्म साक्षात्कार हो गए, आज पता चला मुझे, इसीलिए रोना आ रहा है, क्या हुआ, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, क्यों कैसे? अब पुत्र आखिरी चीज सुनना चाहते थे कि कहां मैं ये सब में फंसा हुआ। तो उसने कहा मैं कहां ये कपड़े का व्यापार कर रहा था, और आनंद कि बस अब आने वाला। और उसने अंत में कहा मुझे लकड़ी का व्यापार करना चाहिए था, देखो कितनी लकड़ी लगती है, हर रोज व्यक्ति मरते हैं, तो लकड़ी का व्यापार करता तो बहुत पैसा कमाता। तो बल लड़कों ने कहा, रे बाप ये तो कुछ नहीं होने वाला है इनका। तो ऐसी हमारी चेतना है कि भगवान ने सब व्यवस्था दे दी, उसके लड़के बिजनेस कर रहे हैं, अब जाए छोड़े, लेकिन वो छोड़ता नहीं। उस समय भी सोच रहे, लकड़ी का व्यापार किया होता तो कितना पैसा कमाता मैं, एक कपड़े के व्यापार में गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए हमारे जीवन, तो जिनको सुविधा दी है भगवान ने, जो बहुत जल्दी ये कर सकते हैं, जो कि समाज में गलत माना जाता है। समाज में अगर आप किसी को कहिए कि आप काम वाम बंद कीजिए, आपके पास बहुत पैसा है, तो बोलेगा अरे पैसा है तो क्या और कमाना। अभी देखिए इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके तो जब उनका पैसा कितना है गिना जाता है तो हमें तो ये भी नहीं पता जीरो कितने लगते हैं। 15,000 करोड़, अब उसमें जीरो कितने हैं बताइए, 15,000 करोड़ में जीरो हमें नहीं पता कितने लगते हैं, हैं? उनको भी मालूम नहीं रहता, लेकिन क्या कर रहे हैं, रोज उठ के टेंशन चिंता, कोर्ट में जाना है, वहां जाना है, ये जाना है, वो राजनीतिक को मिलना है, किस लिए, पैसा पैसा। 15,000 करोड़ कम है और चाहिए 25,000 करोड़। हमें एक बार किसी ने कहा कि एक उद्योगपति ने 800 करोड़ खर्चा किया अपना घर बनाने के लिए, एक घर जिसमें दो लोग रहेंगे, पति पत्नी और शायद एक बच्चा, 800 के 1,000 करोड़ खर्चा किया। हमने कहा कितना मूर्ख है, हमें दे देता हम लोग 500 मंदिर बना देते थे भगवान के। एक घर खुद के रहने के लिए इतना बनाया उसने, जिसमें दो लोग रहेंगे, हमें दे देते 500 मंदिर बनते, सोचते कितने लोगों का उद्धार हो जाता, कितने लोग आते, अलग अलग छोटी सब जगहों पे मंदिर बना देते, 2-2 करोड़ के, ज्यादा बड़े नहीं, 500 मंदिर बन जाते हमारे, भगवान की सब जगह पूजा होती, भगवान की आराधना होती, कितने लोगों को लाभ मिलता। तो अगर तो ऐसे लोग देखिए, ये उदाहरण है कि इतना होने के बाद भी छोड़ने तैयार नहीं है कि चलो अब बहुत हो गया, इतना तो हमारी 7 पुश्ते खा सकती है, 7 जनरेशन खाएंगी, अभी कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो काम, नहीं, रोज वही और कितना कमाओ और कितना कमाओ। और जब ऐसे लोग मरते हैं तो क्या होता है जानते हैं आप लोग, मरते हैं तो 3 दिन तक उनका क्रियाकर्म नहीं होता, क्यों, हॉस्पिटल में रखा जाता है बिना किसी को बताए, मरा नहीं है अभी, क्यों, सारे उसके साइन, उसका अंगूठा, जो चाहिए वो सब सारे पेपर बदले जाते, बाद में अनाउंस होता है कि वो मर गए। देख लीजिए आप, देखिए कोई भी बड़ा व्यक्ति जो उद्योगपति मरता है 3 दिन तक पक्का हॉस्पिटल में रहता है, आईसीयू में, और किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्यों वो सब काम हो रहा है, वो मर गया लेकिन उसका काम हो रहा है सारा। और उसके बाद लड़के आते 3 दिन बाद आंखों में आंसू, हाय हाय पिता चले गए, क्या फायदा ऐसे जीवन का बताओ, मरने के बाद भी उसको 3 दिन तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। इसीलिए अपना जीवन ऐसा बनाए कि हमें, तो किसी को सुविधा है उसको सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जिसके पास सुविधा नहीं है उसको जितना आवश्यकता है उतना कमाए, बाकी समय भगवान की सेवा में लगाए। तो ये कौन सा गुण हो गया, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 गुण हो गए। क्षमा चाहते हैं, आज भी 15 पूरे नहीं कर पाए, इच्छा तो थी कि आज पूरे कर लें लेकिन समय नहीं।